हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 27 एंड 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहकणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात्र की जय हो। अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। भगवान इस अध्याय में अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवत भक्ति की विशेषता बताते आ रहे हैं। सबसे पहले तो भगवान ने कहा, देखो अर्जुन, ये जो ज्ञान है उसमें श्रद्धा रखनी है तुमको, क्योंकि अश्रद्ध धाना पुरुषा धर्मस्या स परम तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमाने। जिसे श्रद्धा ही नहीं है मेरे शब्दों पे, वो तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसेगा। इसे सबसे पहले भगवान ने कहा श्रद्धा जरूर रखना, और उसके बाद भगवान ने यह बताया कि यह पूरा संपूर्ण जो जगत है वो भगवान का ही स्वरूप है। मया ततमिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नहचाहं तेष्वस्थित। सब कुछ मुझ में ही स्थित है। और फिर भगवान ने बताया कि जितने भी जीव प्राणी हैं सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति मियंति मामिका, ये सब मेरी प्रकृति हैं। और कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादविसृजामि, कल्प का आरंभ होता है तो आते हैं, अव्यक्त होते हैं और जब कल्प का अंत होता है तो सब निस्सहाय अवस्था में लीन हो जाते हैं। तो उसके बाद भगवान ने कहा कि ये सारे कार्य करता हूँ मैं, परंतु मैं बंधता नहीं हूँ क्योंकि मैं उदासीन हूँ, उदासीन अवदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। लेकिन फिर भी ये सारी जो सृष्टि है वो मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है और ये जगत जो है वो मेरी ही शक्ति के अनुसार बारंबार सृजन होता है, बारंबार संहार होता है। फिर भगवान ने कहा, देखो ये सब मैंने तुम्हें अपने विषय में बताया, मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन बहुत सारे मूर्ख लोग ऐसे हैं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, फिर क्या करते हैं, उपहास करते हैं। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। वो नहीं जानते हैं और इस तरह से अगर वो नहीं जानते हैं तो मोगाशा मोग कर्माणु मोग ज्ञान विचितसा राक्षसीम असुरीम सैव प्रकृति मूल, उनकी सारी मुक्ति की आशाएं सब काम काम सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन मेरे भक्त वो तो मेरी दिव्य प्रकृति के नीचे आश्रित होते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्य। वो अनन्य भाव से केवल मेरा भजन करते हैं और जानते हैं कि मैं ही समस्त भूत प्राणियों का आदि हूँ और मैं कभी भी नाश नहीं होता हूँ। और इस तरह से वो क्या करते, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रता। वो मेरा ही कंटिन्यूस यत्न करते हैं और मेरा कीर्तन करते हैं। और फिर भगवान ने बताया यहाँ के कि मैं ही जितने भी भक्ति के जो भी साधन हैं, वास्तव में वो साधन भी मैं हूँ, साधक भी मैं हूँ, साध्य भी मैं हूँ। अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदा हम अहम औषधम मंत्रोहम अहमे वाच्यम अहम अग्निर अहम हुतम पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक् साम यदुरेवच गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधनम बीजमव्ययम तपाम्यहम महम वर्षम निगृणाम उत्र सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। तो समझो भगवान ने अपने विषय में इतनी मतलब सारी अपनी भगवत्तता की विशेषताएं बताई और इतना सब बताने के बाद आज भगवान हमें बता रहे हैं कि अब तुम समझ गए ना कि मेरी क्या विशेषताएं हैं, मेरी भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है, मेरी भक्ति की कितनी विशेषताएं हैं, पता चल गया ना। अब भगवान बता रहे हैं प्रैक्टिकल रूप में कि वास्तव में एक साधक को करना क्या है। विशेषताएं पता चल गई, अब ये जानना है कि कृष्ण भक्ति मान ये तो पता चल गया ना। अब ये बताना है, बता रहे भगवान कि जब तुम्हें पता चल गया कि कृष्ण ही समस्त देवों के देव हैं, सर्वस्य प्रभु हैं और कृष्ण ही समस्त साधन साधक और साधना का लक्ष्य है, तो बताओ कि अब करना क्या है। मानो कि कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि समझ में आ गए कृष्ण कि आप ही सब कुछ हो, मुझे बताओ कि अभी मुझे करना है क्या है। जैसे हम बहुत टाइम तक कभी सप्ताह भागवत सप्ताह होता है और या फिर कोई भी बहुत टाइम तक कथा सुनते हैं तो फिर कोई पूछता है कि ठीक है समझ में आ गई मुझे कथा, अब मुझे बताओ मुझे प्रैक्टिकल करना क्या है ना, इसके लिए वो कौन सा कार्य है जो मुझे करना है, शॉर्टकट में बताओ। तो यदि किसी के मन में ऐसा कोई विचार है, यदि हम धर्म को एक श्लोक में, कृष्ण भक्ति सनातन धर्म और भगवत धर्म को एक श्लोक में समझना चाहते हैं, तो कृष्ण आज शॉर्टकट में समझा रहे हैं कि वास्तव में एक भक्त को या एक साधक को करना क्या है। और वो एक ही श्लोक में भगवान बता रहे हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 27। अत्यंत ही सुंदर और महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कान्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् यत् करोषि यदश्नासि यच्चुहोषि ददासियत् यत्तपस्यसि कान्तीय तत्कुरुष्वमदर्पणम् यत्करुषि यदश्नासि यच्चुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कान्तीय तत्कुरुष्वमदर्पणम् शब्दात् यत् कुरुष यत् करुषि यत् मन जो करुषि यानी करते हो यत् अश्नासि यत् यानी जो अश्नासि यानी खाते हो यत् जहुषि यत् यानी जो कुछ जहुषि यानी अर्पण करते हो ददासि यत् यानी दान देते हो जो भी यत् तपस्यसि कौन्तेय यत् यानी जो तपस्यसि यानी तपस्या करते हो हे कुंती पुत्र तत् कुरुष वह करो कैसे मत अर्पणम मुझको अर्पण करते हुए मुझे भेंट रूप में करते हुए अनुवाद हे कुंती पुत्र तुम जो कुछ करते हो जो कुछ खाते हो जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार से ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन के उचिष्ट को ग्रहण करे प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं अतः कृष्ण की संस्तुति है कि इसे मेरे हेतु करो यह अर्जन है प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो जिसका अर्थ है कि अधिक दान का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखलाते हैं यद्यपि इस युग के लिए यह व्यावहारिक नहीं है किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे तो वह निश्चित रूप से महानतम ध्यानी तथा योगी है जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है श्रील प्रभुपाद की जय हो मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवत भक्ति के संपूर्ण साधनों को शॉर्टकट करके एक ही श्लोक में भगवान बता रहे हैं और वास्तव में एक ही साधन है इस एक श्लोक से हमें भगवत प्राप्ति संभव है भगवान कहते हैं इसी के द्वारा आप आगे हमें भगवान कहेंगे श्लोक नंबर 28 भी हम पढ़ेंगे और इसी के द्वारा इसी साधन के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं इसी से सुख प्राप्त हो सकता है इसी से दुख की निवृत्ति हो सकती है इसी से हमें जीवन के वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो जाता है क्या करना है भगवान कहते हैं यत् करोषि करोषि मतलब कार्य वास्तव में भक्तों हम इस भौतिक जगत में जो भी कार्य करते हैं जैसा भी कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है और ये कर्मों का फल भुगतने के लिए हमें इस भौतिक जगत में आना पड़ता है जैसे जैसा भी बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा आम का बीज बोएंगे तो आम मिलेगा करेले का फल बीज बोएंगे तो करेला मिलेगा उसी तरह अच्छे कार्य करेंगे यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यत् करोषि अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा बुरे कार्य करेंगे तो नरक मिलेगा लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप अच्छे कार्य भी करते हो, भले आप कोई भी कार्य करते हो, वो भी वो सारे कार्य, ठीक है, यत करोषि, ये साइड में रखो, होल्ड में रखो, आगे भगवान कुछ और कह रहे हैं। आगे भगवान कह रहे हैं यद अश्नासी, यद माने जो कुछ, अश्नासी यानी खाते हो। अब हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो इस भौतिक जगत में शरीर निर्वाह के लिए हमें कुछ न कुछ तो खाना पड़ेगा, है ना। हर कोई व्यक्ति खाएगा तो सही ना, खाए बगैर कोई नहीं रह सकता। तो भगवान कहते हैं अब जो कुछ भी खाते हो उसको भी होल्ड में रखो। क्या पहले क्या बोला, जो भी कार्य करते हो, उसके बाद बोला जो कुछ खाते हो, और उसके बाद भगवान कहते हैं यह जोहोशी, जोहोशी मतलब जो अर्पित करते हो, किसी को भी आप कर रहे हो, अगर आप अर्पित कर रहे हो तो वो सारा, जो कार्य कर रहे हो, जो खाते हो, जो अर्पित कर रहे हो, और आगे ददासियत, ददासी का मतलब होता है यदि आप कुछ दान दे रहे हो। तो वास्तव में ये सारे कार्य हैं, जैसे कि हमने कहा हर कार्य का कोई ना कोई आपको रिएक्शन मिलता है ना, एवरी एक्शन इज एन अपोजिट रिएक्शन, तो रिएक्शन आपको मिलेगा उस कार्य का। अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो उसकी बदली में आपको फल मिलेगा अच्छा, और अगर बुरा करोगे तो बुरा। अगर अच्छे कार्य करोगे तो उसके बदले में आपको सोने की जंजीरें, सोने की जंजीरें में बांधा जाएगा, लेकिन अगर बुरा कार्य करोगे तो फिर लोहे की जंजीरों में बांधा जाएगा। लेकिन जंजीर तो जंजीर है ना, इसलिए भगवान इन जंजीरों से मुक्त होने के लिए भगवान कहते हैं यत करोषि, जो कार्य करते हो, यत अश्नासी, जो खाते हो, यत जुहोषि, जो अर्पित करते हो, ददासियत, जो दान देते हो। आगे भी कहते हैं यत तपस्यसी, और जो तपस्या करते हो। हाँ समझो, अर्जुन बोले हाँ ठीक है फिर उन सबका करूं क्या, तो भगवान कहते हैं कौन्तेया तत्कुरुष, वो करो, वह मत अर्पण, वो मुझे अर्पण करो। वास्तव में जब तुम मुझे अर्पण कर दोगे सारे कार्य, अपने जितने भी कार्य, हम चाहे जो भी कार्य करते हैं, भगवान आज के श्लोक में हमें दे रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि वो सारे कार्य तुम मुझे अर्पित कर दो। इस श्लोक में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि भगवान ने अपने कार्य को बदलने के लिए नहीं कहा है, मतलब ऐसा कुछ अलग करने के लिए तो नहीं कहा कि आप जाओ आकाश से मेरे लिए सितारे तोड़ के आओ, या फिर कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल मेरे लिए अलग अलग लोगों के लिए कराओ, नहीं। आप भगवान ने कहा यत करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत, जो भी आप पहले कर रहे थे, जो आप कार्य कर रहे थे, अभी भी वही कार्य करो। अगर पुरुष लोग ऑफिस जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की भक्ति को अपनाने के लिए वो ऑफिस जाना छोड़ दें। अगर माताएं पहले घर की सफाई करती हैं और घर में रहती हैं, प्रसाद बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं या दूसरे कार्य घर के करती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति में आने के बाद वो अपना कार्य छोड़ दें। नहीं, भगवान कहते हैं आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, कार्य को चेंज नहीं करना है, पर करना क्या है, तत्कुरुष व मद अर्पण, वो कार्य करो आप मुझे अर्पित करके। अर्पित आपको मुझे करना, यानी जस्ट चेंज योर कॉन्शियसनेस, पहले आप सारे कार्य अपने आप को संतुष्ट करने के लिए करते थे, सारे कार्य इंद्र तृप्ति के लिए करते थे, इसलिए वो सारे कार्य आपके बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन वही कार्य तत्कुरुष व मद अर्पणम, और वही कार्य जब आप मुझे अर्पित करके करोगे तो वही कार्य आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। बहुत ही सुंदर, इसीलिए हम जिस इंटरनेशनल सोसाइटी में रहते हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने बनाए, उसका नाम रखा श्रील प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस सिर्फ चेंज ऑफ, कृष्ण कॉन्शियसनेस का मतलब होता है चेंज ऑफ द कॉन्शियसनेस। आप कोई भी कार्य कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए। हमारी कॉन्शियसनेस क्या होती है, हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी कर रहे होते हैं, ये सोचकर कर रहे होते हैं कि इससे मुझे आनंदित होना है। और भक्त क्या करता है, भक्त भी वही कार्य करता है, सुबह उठता है, स्नान करता है, खाना प्रसाद बनाता है, और लेकिन उसके मन में
यही होता है, जो भी कार्य करता है, चाहे वो स्नान करता है तो भी उसके मन में क्या होता है, मैं स्नान करके जल्दी से भगवान को जगाऊंगा, भगवान की आरती करूंगा। मन में ये होता है कि मुझे भगवान की सेवा के लिए अपने शरीर को स्वच्छ करना है। प्रसाद भी बना रहा होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है कि मैं भगवान को भोग लगाऊंगा। ऑफिस भी जा रहा होता है, कॉन्शियसनेस क्या होती है कि धन अर्जित होगा और मैं भगवान के लिए अर्पित करने के लिए वस्तु फ्रूट्स अनाज वो भी वही लेके आता है। जो कर्मी लोग होते हैं वो भी यही होते हैं, धन अर्जित करते हैं और घर के भरण पोषण के लिए सब वस्तुएं लेकर आते हैं। उनकी कॉन्शियसनेस क्या होती है कि ये मैं कार्य कर रहा हूं अपने आनंद के लिए। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, तत्कुरुष व मद अर्पण, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है, यही कृष्ण भावना है और वास्तव में यही भक्ति है कि हम कोई भी कार्य करें उसके समय हमें ये सोचना है कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। कोई कह सकता है कि इसमें कोई नई बात नहीं बताई है, हम सारे कार्य करते तो हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान ने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई है वो है मद अर्पण। मद अर्पण मतलब हर एक कार्य का, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे तपस्या हो, चाहे दान हो, उसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है वो भगवान को समर्पित करना है, भगवान को अर्पित करना है। वास्तव में भक्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जब सारे कार्य का फल भगवान को अर्पित करते हैं वही वास्तव में सबसे सुंदर कार्य होता है। प्रहलाद महाराज से जब पिता ने पूछा, प्रहलाद तुझे सबसे सुंदर बात क्या लगी, तब प्रहलाद ने बहुत ही सुंदर रीति से नवधा भक्ति के विषय में बताया, पिताजी मुझे सबसे सुंदर बात लगी भगवान की भक्ति जो नवधा तरीके से होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा अर्पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणम इति पुंसम। ये हम सब करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, परंतु वास्तविक क्या है, इति पुंसम अर्पित विष्णु, वो सारा का सारा जो भी हम कर रहे हैं उसका सारा का सारा रिजल्ट भगवान के लिए, भगवान को समर्पित करने के लिए, ये है वास्तव में दिव्य भक्ति, ये है वास्तव में वह भक्ति जिसके द्वारा हम अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, जो तपस्या करते हो उसे मुझे करते हो। अब एक व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक कार्य तो करता रहता है, अभी अर्पित कैसे करेगा, बार बार घंटी उठाएगा, बार बार बोलेगा नमो ब्रह्मणाय देव गो ब्रह्मण हिताय जगत दिताय कृष्ण गोविंदाय नमो नमः, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गोचरे। तो ये बार बार मंत्रास पढ़ने पड़ेंगे, या एक दूसरा तरीका होता है हाथ में पानी डालते हैं और फिर बोलते हैं श्री कृष्ण समर्पयामि, तो क्या हर एक कार्य के बाद उसको ऐसे अर्पित करना पड़ेगा उसको? अगर ऐसे करना पड़ेगा, हर एक कार्य करने के पहले या उसके बाद पहले अर्पित करने का ये सीन करना पड़ेगा, तो पागल कहेंगे सब, और आधे से ज्यादा दिन तो इसी में निकल जाएगा। तो फिर भगवान को हर कार्य अर्पित किया कैसे जाए? श्रील रूप गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से इस बात का उत्तर देते हैं कि अपने समस्त कार्यों को भगवान को अर्पित करना कैसे है, कि यदि कोई मनुष्य केवल दो बातें याद रखता है कोई भी कार्य करते वक्त, सिर्फ दो बातें उसे याद करनी है, एक ये कि हम जो भी कर रहे हैं, चाहे अपने मन से कर रहे हैं, चाहे वाणी से कर रहे हैं, चाहे शरीर से कर रहे हैं, किसी भी हमारे अंग से हम जो भी कार्य कर रहे हैं, वास्तव में वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि कृष्ण हमारी सहायता कर, वो वास्तव में कृष्ण की कृपा से कर पा रहे हैं, कृष्ण की सहायता से कर पा रहे हैं, कृष्ण की वजह से कर पा रहे हैं। अगर कृष्ण उस समय हमें पावर ना दे तो हम वो कार्य ना कर सके। इसलिए अब एक बात ये याद रखनी है कि हम ये कार्य क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण ने हमें सहायता प्रदान की है, कृष्ण ने हमें पावर प्रदान किया, कृष्ण ने हमें शरीर प्रदान किया, कृष्ण ने हमें बुद्धि प्रदान की, इसीलिए हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और दूसरा ये, क्योंकि ये सारा कृष्ण के कारण हुआ है तो इसका जो भी फल है वो कृष्ण के लिए है। यदि ये दो चीजें याद हो, एक तो कृष्ण के कारण कर पा रहा हूँ और इसलिए कृष्ण के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के कारण हो रहा है तो इसलिए कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही ये कार्य। यदि ये दो चीजें हमें याद रहे तो हमारे सारे कार्य भगवान को अर्पित हो जाते हैं खुद ब खुद, उसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला 22.113 में बताया गया है कि भक्ति के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी बातें हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। विधि निषेध, विधि का मतलब होता है ये चीजें आपको करनी चाहिए, और निषेध मतलब ये चीजें नहीं देनी चाहिए। लेकिन इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस में दो रूल्स ऐसे हैं जो बाकी सब रूल्स के किंकर हैं, बाकी जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उन दो रूल्स के किंकर, किंकर मतलब नौकर है, उनके अंडर में दो रूल आप कर रहे हो तो समझो बाकी सब हो रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, कृष्णदास कविराज महाराज कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्वे विद्धि निषेधाशोर एतयोर एव किंकर। स्मर्तव्य सततम विष्णु, याद करना है सदैव, स्मर्तव्य मतलब सदैव याद रखना है, किसको? भगवान को, विष्णु, विष्णु यानी भगवान श्री कृष्ण को सदैव याद करना है। और विस्मर्तव्यो न जातुचित, और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलना है। सर्व विद्धि निषेधा, विद्धि निषेधा मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं बाकी भक्ति के, सर्वे विद्धि निषेधाय शयोर एतयोर एव किंकर, इसी एक, कौन सा एक रूल है क्या? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण नेवर फॉरगेट हिम, सदैव कृष्ण को याद रखो, एक क्षण के लिए भी उसे कभी मत भूलो। आपको याद रखना चाहिए कि मेरे पास जो संपत्ति है वो कृष्ण की है, जो शरीर है वो कृष्ण का है, आत्मा कृष्ण का अंश है, बुद्धि कृष्ण की दी हुई है। सदैव यदि कृष्ण को याद करें, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, एक क्षण के लिए भी यदि हम कृष्ण को नहीं भूलते हैं सब, तो फिर सारे विद्धि निषेधाय तयोर ए तयोर एव किंकर, इसी एक बात की, बाकी सारे विद्धि और निषेध उसी के किंकर हैं, उसी के नौकर हैं, इसी के अंडर में रहकर सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर आपको याद रहेगा कि कृष्ण ही, कृष्ण को याद रहे, कृष्ण को याद करेंगे कि कृष्ण ही के कारण मेरा शरीर है, तो फिर मैं शरीर से कोई ऐसा कार्य ना करूं जिससे मैं कृष्ण को प्रसन्न ना कर सकूं, जो कृष्ण को अप्रसन्न करता है, तो मुझे इस शरीर के द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कृष्ण ने ये बुद्धि दी है तो इस बुद्धि का उपयोग मैं कृष्ण की सेवा में करूं, कृष्ण ने धन दिया है तो इस धन का उपयोग मुझे कृष्ण की सेवा में करना चाहिए, कृष्ण ने संतान दी है तो संतान को पाला मुझे कृष्ण की, कृष्ण ने इतना सुंदर घर दिया है तो इस घर को मुझे कृष्ण की सेवा में। यदि ये याद रहेगा ना कि कृष्ण ही सब कुछ देने वाले हैं, कृष्ण ही सब कुछ करने वाले हैं, कृष्ण ही समस्त वस्तुओं का स्रोत है, तो फिर हम कृष्ण के लिए ही सारा कार्य करेंगे। तो वास्तव में यही बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अब जो कुछ भी करते हो, यत करोषि यदश्नासी यज्जुहोसी ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष व मद अर्पण, जो भी आप करते हो वो मुझे अर्पण करो। और इससे क्या लाभ होगा? समझो अर्जुन ने बोला, चलो ठीक है कर दूंगा तो लाभ क्या होगा, हर चीज तुझे अर्पण कर दो, मेरे लिए क्या बचेगा, है ना? कोई लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ भाई, हम अगर 40,000 रूपये कमा रहे हैं तो क्या साढ़े 40,000 रूपये भगवान को ही अर्पित कर दें? हम अगर घर में इतना भोजन बना रहे हैं तो सारा का सारा भगवान को अर्पण कर रहे, भगवान खा लेगा तो मेरे लिए क्या बचेगा? ऐसा वास्तव में करके देखना चाहिए कभी कि सारा का सारा हमारे पास जो कुछ भी है यदि भगवान को अर्पित करते हैं, जिन्होंने किया है उन्होंने पाया है, भगवान को देने से कभी कम नहीं होता। हम उनको 40,000 देंगे तो वो 40,00,000 करके दे देंगे, भगवान कोई, उनको हमारी वस्तुओं की आवश्यकता भी नहीं है, लक्ष्मीपति है वो। ऐसे तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि लक्ष्मी सहस्त्र शतसम ब्रह्म सेव्यम मानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां एक साथ जिन भगवान की सेवा करते हैं वो है भगवान, त्रिलोकी के नाथ हैं, वो हमारी वस्तुओं के इच्छित नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखते हैं, मगर क्योंकि भगवान हमारा कल्याण चाहते हैं इसीलिए भगवान कहते हैं कि यदि आप सब कुछ मुझे अर्पित करोगे तो क्या होगा। भगवान कहते हैं तो जब सारे कार्य हम भगवान को अर्पित करेंगे तो भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसि कर्म बंधनाय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसि कर्म बंधनाय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि शुभा शुभ फलैरेवम् मोक्षसि कर्म बंधनाय संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैशसि। शब्दात शुभ अशुभ फलैरेवम्, शुभ यानी शुभ यानी जो शुभ कार्य होते हैं पवित्र कार्य होते हैं, और अशुभ यानी अपवित्र, मतलब ऑस्पिशियस एंड इनऑस्पिशियस, जितने भी कार्य हैं फलय फलों के द्वारा एवं इस प्रकार, किस प्रकार, यदि वो सारे कार्य जो भी हम करते हैं वो भगवान को समर्पित करेंगे तो इस प्रकार जितने भी फलों के जो भी शुभ और अशुभ फल होंगे जितने भी कर्मों के, एवं मोक्ष से कर्म बंधना, मोक्ष से मुक्त हो जाएंगे कर्म बंधना, संन्यास योग युक्त आत्मा, संन्यास के योग से युक्त आत्मा यानी मन को स्थिर करके, विमुक्त माम उपैश से मुक्त हुआ व्यक्ति, माम उपैश से मनी मुझको प्राप्त करता है। अनुवाद, भगवान कहते हैं इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर रीति से समझाएंगे। वे कहते हैं कि गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। इस भगवान ने कहा है कि युक्त संन्यास योग युक्त आत्मा, युक्त कैसे हुआ जाता है, जैसे जो सद्गुरु होते हैं जो तत्वदर्शी गुरु महाराज होते हैं वो जब हमें निर्देशन देते हैं, वो निर्देशन क्या देते हैं, भगवान की भक्ति का, हमें करनी भगवान की भक्ति है, गुरु की भक्ति नहीं। कहा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत, गुरु निर्देशन गुरु का होगा, भक्ति कृष्ण की होगी, और इस तरह रहकर जब सारे कार्य कृष्ण को अर्पित करेंगे तो इसे युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, युक्त वैराग्य मतलब कुछ लोग का वैराग्य क्या होता है कि वो सारा कार्य करना बंद कर देते हैं, लेकिन युक्त वैराग्य क्या है उसके विषय में श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत संहिता 2.255 में बताते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथा हम उपयुंजत। अनासक्त विषयान यानी जितने भी भौतिक विषय हैं उनसे कोई आसक्ति नहीं हो, और वो कार्य कैसे, क्यों कहें हम लोग फिर, जब अब कोई भी लोग कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि हमें विषय के अंदर आसक्ति होती है, इंद्रियों के विषय के अंदर आसक्ति होती है तभी कार्य करते हैं। लेकिन यदि अनासक्त विषयान विषय में कोई आसक्ति ना हो, यथार हम उपयुंजता वो सारा जो कार्य हम कर रहे हैं निर्बंध, आसक्ति के बगैर जो कार्य करेंगे निर्बंध कृष्ण संबंधी, कार्य के अंदर कोई आसक्ति नहीं हो, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि कार्य किया जाता है तो युक्त वैराग्य मुच्यते, तो वास्तव में वो युक्त वैराग्य है। लेकिन अगर हम कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई वैराग्य ऐसा होता है ना, कार्य करना छोड़ दिया, कार्य नहीं कर रहे लेकिन मन में यदि कार्य करने की इच्छा है और उसके फल भोगने की या उस विषय के अंदर इच्छा है, तो वो फल वो वैराग्य, उससे कोई फायदा नहीं होगा। युक्त वैराग्य के आश्रय रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, जब तक जीव इस भौतिक जगत में कार्य तो बंद नहीं कर सकता, अतः यदि कर्म करके उसके फल कृष्ण को अर्पित किए जाएं तो यह युक्त वैराग्य रहता है। क्योंकि जब तक हम कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित नहीं करेंगे तो वो कार्य जो भी है वो हमारे बंधन का कारण बनेंगे। लेकिन वास्तविक वैराग्य क्या है कि हम वो सारे कार्य करें भी और उसका सारा फल भी भगवान को अर्पित करें। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता जो जो कर्मशः आत्म साक्षात की ओर प्रगति करता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। बहुत ही सुंदर रीति से बता रहे हैं कि जब हम हमारे हृदय का दर्पण स्वच्छ होता है, कैसे, संन्यास में, कौन सा संन्यास, कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, तो इससे हमारे हृदय के अंदर जो भौतिक वस्तुओं को भोगने की गंदगी है वो साफ हो जाएगी और चित्त रूपी दर्पण जो है वो स्वच्छ हो जाएगा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आत्म साक्षात की ओर हमारी प्रगति होगी, हमें यह रियलाइज होगा कि ये जो भौतिक आनंद है वो तो भौतिक शरीर ले रहा है लेकिन वास्तव में तो आत्मा हूँ। और जब आत्म साक्षात्कार होता है त्यों त्यों वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता है, उसे वो जान जाता है कि मैं आत्मा हूँ और यह आत्मा भगवान का अंश है, तो वो पूरी तरह से समर्पित होता है। अतएव अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई कि जैसे जैसे आत्म साक्षात्कार होता है और आप कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हो, कोई भी कार्य इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते हो, तो इस भौतिक जगत में जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो अंत होता है, तो मुक्ति प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी कर्म का बंधन तो बचा नहीं ना, शुभाशुभ फल ही रहे, वह मोक्ष से कर्म बंधन, सारे कर्मों के बंधन तो खत्म हो गए, तो फिर मुक्ति होगी और वो मुक्ति विशिष्ट होगी। अब वो मुक्ति कैसी विशिष्ट होगी वो श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकर नहीं होता अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है, माम उपैशसी, भगवान ने कहा संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसी, यो इस तरह से युक्त होगा योग के साथ, कौन सा, किस तरह से, कि वो किसी भी वस्तु के अंदर आसक्ति नहीं रखेगा, अनासक्त विषयान, और इस तरह से निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य, इस तरह से जो युक्त रहेगा वो क्या करेगा, माम उपैशसी, वो मेरे पास आएगा अर्थात मेरे धाम में वापिस आता है। मुक्ति की पांच विभिन्न अवस्थाएं, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर मुक्ति के पांच अलग अलग अवस्थाएं बता रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारष्टि, यानी कि भगवान के लोक में जाना सालोक्य होता है, सामीप्य भगवान के निकट जाकर रहना, सारष्टि यानी भगवान का कोई संबंधी बनना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप धारण कर देना, या सायुज्य, एक सायुज्य मुक्ति होती है यानी निराकार में तदात्म्य हो जाना, निराकार ज्योति के अंदर लीन हो जाना। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी पांच मुक्तियों के विषय में बता रहे हैं और कहते हैं यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त करता हुआ जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान के प्रत्यक्ष संगति में रहता है, वो भगवान के धाम में जाता है, कृष्ण लोक में जाता है, ये किसी वैकुंठ लोक में नहीं जाता, भगवान के जैसा रूप धारण कर लेता है या भगवान के संग में रहता, नहीं, भगवान के वास्तविक गौलोक वृंदावन भगवान ने कहा माम उपैशसी यानी मेरे लोक में जाता है वो और मेरी संगति को प्राप्त करता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही मुख्य बात यहाँ पर बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति में अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि नहीं होती है वही वास्तविक सन्यासी है। वास्तव में जो यहाँ पर भगवान ने बताया है कि सन्यास योग युक्त आत्मा, वास्तव में सन्यासी वो नहीं है। आगे भी भगवान चैप्टर में 18 में बताएंगे, अर्जुन पूछेंगे कि सन्यास का क्या मतलब है, तो भगवान कहते हैं सन्यास का मतलब ये नहीं है कि आप सारा घर बार छोड़ के आप अपने कार्य छोड़ के चले जाओ जंगल में। और भगवान कहते हैं सन्यास का मतलब होता है कि हृदय के अंदर किसी भी वस्तु को भोगने की रुचि न हो, कृष्ण को प्रसन्न करने के अतिरिक्त भगवत सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई रुचि न होना वही वास्तविक संन्यास है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। वो यही सोचता है कि मैं क्योंकि भगवान का नित्य दास हूँ तो जैसे भगवान को अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा, भगवान की कृपा मतलब वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं खाता है, वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, कोई भी कार्य करता है तो यही सोचकर करता है कि मैं इस कार्य के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करूं, अथवा जो कुछ भी करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे अनुकूलस्य कृष्णस्य प्रतिकूल से न जातुचित, वो केवल वही कार्य करता है जिससे कृष्ण को प्रसन्नता मिलती है, वह जो कुछ भी कर्म करता है भगवान की सेवा के लिए करता है। वह सकाम कर्मों या देव वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता, वो ये नहीं सोचता कि मुझे ये करना चाहिए, अभी मेरा कुल देव ये है मुझे उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, चलो मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ लेकिन क्योंकि हम वास्तव हमें शुरू से इस देवी देवता की पूजा करता था या फिर मैं ये अर्चना करता था वो इन सब काम या फिर ये प्राप्त नहीं करूंगा तो मुझे ना पुत्र उत्पन्न नहीं होगा या घर में धन नहीं आएगा या इस तरह की जो बातें सोचते हैं उसको खाली ये पता होता है कि क्योंकि मेरे जीवन का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है तो वो केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही कार्य करता है। वो सकाम कर्मों या देव वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए देव वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, जो दूसरे कर्तव्य होते हैं वो करना सामान्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है, वो जरूरी है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की स्वेच्छा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं होता अभी क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य केवल क्या होता है भगवान को प्रसन्न करना। तो वेदों में कुछ कार्य ऐसे लिखे हुए होते हैं जो कि वो नहीं पूरे करता लेकिन फिर भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो वस्तुतः विरोध नहीं होता। जैसे वेदों में क्या लिखा हुआ है कि हर एक संतान को अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा लिखा ना, तो वास्तव में यदि साधारणतया कोई ऐसा नहीं करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है तो क्या होता है उसे पनिशमेंट मिलती है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन जब वो शुद्ध भक्त बन जाता है प्रहलाद के जैसा, प्रहलाद ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनके पिताजी कहते थे कि प्रहलाद आप भगवान श्री हरि का नाम मत लो, आप मुझे बोलो जय हिरण्यकश्यपु बोलो, लेकिन प्रहलाद फिर भी बोलते थे जय तो केवल श्री हरि की करूंगा पिताजी, जय श्री हरि, तो पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, फिर भी विरोधी, फिर भी उसको आज हम क्या बोलते हैं भक्त श्रोमणि, है ना, भक्त श्रोमणि, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य था कृष्ण की भक्ति, कृष्ण को प्रसन्न करना। उसी प्रकार वेदों में लिखा हुआ है कि गुरु महाराज की आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं महाराजा बलि, उनके गुरु शुक्राचार्य ने कहा देखो बलि ये जो आया है ना तीन पग लेने के लिए छोटा सा बोना बनकर, वो वास्तव में विष्णु है, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, खबरदार इसको संकल्प करके कुछ भी देना नहीं। तभी बलि महाराज ने कहा अगर ये वास्तव में विष्णु है और मुझसे लेने के लिए आया है तो फिर मैं कैसे नहीं दूं, गुरु महाराज मेरा तो वैसे ही सब कुछ इन्हीं का है, मेरा तो सौभाग्य है कि ये कुछ चल कर आए हैं, तो फिर मैं इन्हें अवश्य दूंगा, भले आप इतना भी मना करो। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया फिर भी वो महाजनों में गिने जाते हैं। उसी प्रकार शास्त्र कहता है जो राजा होता है और जो बड़ा भाई होता है उसके आदेश का पालन करना चाहिए। विभीषण ने रावण की आज्ञा का उल्लंघन किया फिर भी भगवान ने उन्हें जाते ही लंकेश बना दिया। उसी प्रकार पत्नी को अपने पतियों की आदेश का पालन करना होता है, केवल उन्हीं से प्रेम करना पड़ता है, लेकिन गोपियों ने अपने पतियों की परवाह नहीं की और उनको छोड़कर अंधेरी रात में भगवान से मिलने गए, क्योंकि उनके हृदय में केवल भगवान को संतुष्ट करने की इच्छा थी। तो वो समस्त जितने भी ऋषि हैं, जितने भी मुनि हैं, वो उन्हें आराध्य मानते हैं। गोपी भर्तु पद कमल दास दास दासानुदास, जितने महाप्रभु इसे बताते, जो सब सर्वश्रेष्ठ वैरागी हैं, वो भी कहते हैं गोपियों के भर्तु श्री कृष्ण के दासों, चरण कमल के दासों के दासों का दासों का दास हूं मैं। तो वास्तव में यही बात बता रहे हैं कि यदि हृदय में केवल एक ही इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न करने की, उसके अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है, तो फिर किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतया रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं होता है। अतः वैष्णव आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है ताहार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञेह न बुझे, यानी कि चैतन्य चरितामृत में बताया जाता है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके वाक्य, वो जो बोल रहे होते हैं, उनकी क्रिया जो वो कार्य करते हैं, उनकी मुद्रा उनके इशारे विज्ञान जो देखते हैं वो सही तरह से समझ, भले कितने विज्ञ कितने ही बुद्धिमान हो, बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, पर उनकी योजनाओं को समझते नहीं है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता है कि किस तरह से भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत दान जाना ध्रुव है। यहाँ श्री प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर बात पहले बता चुके हैं कि गुरु के निर्देशन में है ना, युक्त वैराग्य का क्या मतलब होता है कि जो गुरु महाराज ने आदेश दिया है उसी के अनुसार। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति बीच से उठे और कहे कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है और मेरी बुद्धि के द्वारा मैं ये तरीका अपनाऊंगा और इससे मैं कृष्ण को खुश करूंगा, आज से मैं एक स्वतंत्र गुरु बन जाऊंगा और अपनी जितने भी मेरे चेले चपाटे होंगे उनको मैं अपनी मर्जी से नियंत्रित करूंगा और इस तरह से उनको सिखाऊंगा। नहीं, जैसा गुरु महाराज जैसा परंपरा ने हमें बताया है उसके अनुसार हमें गुरु और गौरंग की को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है। ऐसे नहीं कि मन बुद्धि से कार्य कर, जो वैष्णव आचार्यों ने बताया, जो शास्त्र ने बताया है, जो श्रुति स्मृति ने बताया है, तो इनके द्वारा हमें समझ के उसी के द्वारा हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रहता है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतया मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत दाम जाना ध्रुव है, मतलब निश्चित है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर आप ऐसा करोगे यत कुरुषी यदश्नासी यद जुहोसी ददासी यत यत तपस्यसी कौनते यत तत्कुरुष्व मदर्पण, आप जो भी कर रहे हो वो सब मुझे प्रसन्न करने के लिए करो, और इस तरह से यदि आप करोगे शुभाशुभ फलई रेवम मोक्ष से कर्म बंधन, आप सारे कर्मों के बंधन से छूट जाओगे और संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैशसी, और इस तरह से तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो जिस प्रकार कृष्ण आलोचना से परे हैं उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे। कृष्ण आलोचना से परे मतलब कृष्ण की निंदा नहीं की जा सकती कि कृष्ण ने ऐसा कार्य क्यों किया, है ना, कि कृष्ण ने कृष्ण को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान है, वो कोई भी कार्य करेंगे तो वो कार्य शुद्ध हो जाएगा। उसी तरह अगर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनका भक्त जैसे प्रहलाद अपने पिता की आज्ञा नहीं मानता, या फिर बलि अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता तो उनकी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वो यहाँ पर इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रहा है, अपने मान सम्मान के लिए कार्य नहीं कर रहा है, अपनी प्रशंसा के लिए कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है। और वास्तव में भक्तों, यही हमारे जीवन का परम धर्म है, यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम किस तरह से अपने इस जीवन को भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यतीत करें। शास्त्र कहता है सवै पुंसाम परो धर्मो यतुर भक्ति अधोक्षजे अहितुकिया प्रतिहिताः ययात्मा सुप्रसीदति कि सवै पुंसाम परो धर्म, जितने भी मनुष्य हैं उनका वास्तव में जो परम धर्म है वो क्या है, यतुर भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, इसके इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। बाकी जितने आपके धर्म हैं जो कि वेद वर्णित हैं वो सब आपके इस भौतिक शरीर से रिलेटेड हैं, लेकिन आपकी आत्मा जिससे प्रसिद्ध हो सकती है, ये यात्मा सुप्रसिद्धति, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो सकता है, जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त हो सकती है, वो केवल एक ही कार्य है, वो क्या है, यतुर भक्ति अधोक्षजे, उस अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इसके अतिरिक्त आपका और कोई कार्य नहीं है। और इस नवे चैप्टर में भगवान हमें किस तरह से आसान भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति, इस जितना भी हमने पढ़ा उसका अगर हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं तो हमने पढ़ा कि भक्ति सुगम है, बहुत ज्यादा सुगम है, कोई भी कर सकता है। भक्ति को करने के लिए आपके अंदर कोई क्वालिफिकेशन होने की आवश्यकता नहीं, आपके अंदर कोई योग्यता होने की जरूरत, एक 5 साल का बच्चा भी भक्ति कर सकता है। करना क्या है, यत कुरुषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत यत या तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् पत्रम पुष्पम फलम। छोटा सा बच्चा है, उसको आप बताओ बेटा आप जब भी पानी पियो उसको आप पहले बोला करो भगवान आप स्वीकार करो फिर आप पियो, है ना। छोटा सा बच्चा है वो भी भक्ति कर सकता है। क्या करना क्या है, स्मर्तव्यम सततम विष्णु, कृष्ण को खाली स्मरण ही तो करना है। छोटा सा बच्चा भी भगवान का नाम ले सकता है और भगवान की कथाओं को श्रवण कर सकता है। क्या छोटा बच्चा यज्ञ कर सकता है, ध्यान कर सकता है, नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। हम उसको बोले भी कार्तिक मास है, अभी रोजाना सुबह और शाम भगवान को दीप अर्पण करेंगे, कर सकता है ना। भक्ति करना सुगम है सबके लिए, और उसके लिए आपको धन की कोई आवश्यकता नहीं। भक्ति राजा भी कर सकता है और एक भिखारी भी कर सकता है। उसके अभी बेकारी जो होता है वो दूसरे साधन नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकता, दान नहीं कर सकता, ध्यान नहीं कर सकता, लेकिन भक्ति कर सकता है। भगवान का नाम लेना है और जो भी करना है, भगवान ने कहा यत करोषि, जो भी करना है मुझे अर्पण करो, कोई भी कर सकता है। करना क्या है, बस भगवान ने कहा जो आपके पास है, जो भी आप कार्य करते हो मुझे अर्पित करो। भक्ति सुगम है, और ना केवल भक्ति सुगम है बल्कि उसके साथ साथ भक्ति सुसुखम है। ये भक्ति करने, भक्ति बहुत आनंद से की, भगवान ने कहा सुसुखम कर तुम अव्ययम, ये वो कार्य है जो आनंद से किया गया, क्योंकि जीव का वास्तविक जो स्वरूप है वो प्रेम करना है, और भक्ति में हमें प्रेम ही तो करना है कृष्ण के साथ। और योग तपस्या ध्यान धारणा इनमें हमें प्रेम नहीं मिल रहा है, उसमें निराकार के साथ संबंध नहीं जोड़ सक रहे हैं, इसलिए वो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भक्ति सुसुखम, अब देखो आप श्रवण कर रहे हो भगवान के विषय में, जिनको प्रेम है उनका दिल करता है कि हम और भी श्रवण करने को मिले। वो कोई मौका, जब तक लेक्चर नहीं आता तब तक मुझे 10 मैसेज आते हैं, अभी तक दीदी लेक्चर नहीं आया, अभी तक श्रवण करने को नहीं मिला। कितना आनंद है श्रवण करने में, और भी दिल करता है श्रवण किया जाए। नाम जप करने में कितना आनंद है, 16 माला तो शिला प्रभुपाद ने प्रिस्क्राइब किया आपको, फिर भी किसी के देखती हूँ 20 लाभ आने, किसी के 25 लाभ आने, किसी के 32 लाभ आने, किसी के और भी ज्यादा, कितना आनंद आता है। जितना जितना टेस्ट हम करते जाते हैं उतना उतना टेस्ट डेवलप हो रहा होता है। सुसुखम आनंद, और वास्तव में आनंद ही तो चाहती है एक आत्मा, का एक ही प्रयोजन है आनंद प्राप्त करना, और वही एकमात्र आनंद है। भगवान से पूछा अर्जुन ने, बता, सब आपके ख्याल में सबसे ज्यादा आसान भक्ति कौन सी है, सिद्ध कौन सा है, जो निराकार की भक्ति करता है, दूसरे साधना करता है, जो आपकी भक्ति करता है। तब अर्जुन ने कहा, अर्जुन को भगवान ने, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामत। भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। भगवान ने उसको सिद्ध कह दिया कि वो बहुत ही सिद्ध है, जो मेरे साकार रूप भक्ति बहुत आनंद से होती है, बहुत सुखमयी है, बहुत ही सुगम है, और सबसे बड़ी बात भक्ति सुसुरक्षित है। जो भक्त होता है वो सुरक्षित होता है भगवान के द्वारा। भगवान ने कहा कि योगक्षेमम वहाम्यम, उसके सारे जितने भी उसके जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा, और जो उसे चाहिए वो उसे प्रोवाइड करूंगा, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। और अगर साधारण से उदाहरण से भक्त को समझना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण और समझ में आने वाला उदाहरण है। शास्त्र कहता है कि भक्ति और अन्य साधन का अगर हमें कॉम्पेयर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, भक्ति जो है वो उस प्रकार है जिस प्रकार से बिल्ली का बच्चा और अन्य साधन जितने भी हैं, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, समाधि जितने भी हैं, वो सब है बंदर का बच्चा। अगर किसी ने देखा होगा तो बंदर का बच्चा जब अपनी माँ के साथ चल रहा होता है, उसकी माँ जब एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग मारी होती है ना, तब अपने बच्चे को नहीं संभालती, बच्चे को पकड़ती नहीं है, बल्कि बच्चा उसको जोर से कस के पकड़ रहा होता है उसके पेट पर, है ना, बहुत जोर से उसने अपनी मेहनत से उसको पकड़ा है, थोड़ा सा ढीला पड़ गया तो गिर जाएगा और न जाने उसका क्या होगा। परंतु बिल्ली का बच्चा निर्भय है, बिल्ली का बच्चा जो है उसको उसकी मम्मी अपने मुंह में पकड़ती है, छोटा बच्चा होता है उसको खुद से कुछ नहीं करना पड़ता, वो सुरक्षित है, बिल्ली कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी, वो निर्भय है। उसी तरह कृष्ण का जो भक्त होता है वो निर्भय होता है, भगवान स्वयं उसकी उसको संरक्षण प्रदान करते हैं। बाकी जितनी साधना है, बाकी जितने भी ज्ञान, योग, तप, तपस्या, धारणा, ये सब में अपनी मेहनत करनी पड़ती है। वास्तव में भक्तों, इस संसार में भोग जो है, बाकी जितनी भी वस्तुएं हैं, वो आपको अपने कर्मों से मिलती हैं, परंतु भक्ति हमारी इच्छा से मिलती है। जब हम हृदय में इच्छा करते हैं तभी हमें भक्ति मिलती है। और इच्छा कैसे उत्पन्न होती है, जब हम शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में इच्छा होती है कि हमें भी भगवान की भक्ति करनी है। और क्या करना है, मोक्ष से कर्म बंधन। हम इस भौतिक जगत में क्यों है जानते हैं, क्योंकि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, कर्मों के फलों में बंधे हुए हैं, तभी हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं और कष्ट भुगत रहे। ये भौतिक जगत एक जेल है और इससे छूटने का केवल एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। और वो क्या है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं का श्रवण करना, और जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो यही सोच के करना कि हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। यदि इतना कर लिया तो शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपाश्यसे। कृष्ण ने गारंटी दी है कि अगर ऐसे करोगे तो तुम भौतिक जगत में मुक्त हो जाओगे और मृत्यु के बाद मेरे पास आओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं भगवान की शुद्ध भक्ति कर सकूं। हरे कृष्ण।